जय माँ।
The recording has started.
आज विशेष दिवस है 17 नवंबर, और वास्तव में ये बिल्कुल एक ऐसा दिवस है जिसके विषय में हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए नहीं कि वो क्या है ये स्पष्ट है, किंतु मानव भाषा की वो सीमा है। जैसे मानव दृष्टि की सीमा है, वैसे मानव भाषा की सीमा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनका मानव भाषा जिनको अभिव्यक्त नहीं कर पाती है। आज ही सुबह बात हो रही थी महासमाधि, महाप्रयाण, ये सारे शब्द बेमानी हो जाते हैं क्योंकि कोई भी शब्द इसमें अप्लाई नहीं करता है। एक ऐसी घटना है जो आज तक हुई नहीं है, न भूतो न भविष्यतो। मृत्यु के द्वार से गुजर के अमृतत्व की देह में प्रवेश, ये इट हैज नेवर बीन डन बिफोर। परंतु वह अमृतत्व की देह जो जड़ तत्व को रूपांतरित करके बनी हो, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड है। माताजी हम लोग देखते हैं कि 1962 के बाद वो बार बार बताती हैं कि मैं अब इस देह में नहीं हूँ। फिर वो कहती हैं मैं इस देह में नहीं हूँ, ये तो बहुत पहले से है, लेकिन मैं अब ये देह मेरे बाहर है। और फिर वो अपने नए शरीर को रूपांतरित कर रही हैं और अपने पुराने शरीर को नए शरीर में रूपांतरित कर रही हैं। तो एक प्रश्न करता है कोई विद्यार्थी कि हम कब आपके नए शरीर को देख पाएंगे, तो माँ कहती तुम्हें इसके लिए अभी बहुत प्रोग्रेस करनी है। और फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहती हैं, कहती मैं चाहूँ तो अभी से स्विच ऑफ कर दूँ उस नए शरीर में, लेकिन ऐसा करना वो क्या सोच रही उस समय हम कल्पना नहीं कर सकते। वो कहती ये जो सेल्स हैं, कोशिकाएँ हैं, इन्होंने सेवा की है और इनको मुझसे बड़ी आशा है। तो ये जो कोशिकाएं जो लास्ट में जो रिफ्यूज कर रही हैं, प्रत्येक कोशिका कुछ ना कुछ ब्रह्मांड में किसी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। जैसे खासकर माँ टुवर्ड द एंड ह्यूमन लैंग्वेज है, तो उसमें वो हड्डी के ऊपर बहुत, बोन्स के ऊपर बहुत कार्य कर रही थी। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वहाँ से आता है, और अगर हम हड्डियों को देखें तो वो वास्तव में निश्चेतना का प्रतीक है। एक्चुअली हड्डी लिटरली डेड है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो हड्डी डेड टिश्यू है, लेकिन हड्डी के अंदर से प्राण तत्व जीवन उभरता है। सारी जो सेल्स बनती हैं, रेड ब्लड सेल्स, बोन मैरो, बहुत इंटरेस्टिंग है। नेचर ने हर चीज़ के अंदर ऐसे किसी न किसी सांकेतिक रूप में कुछ कहने की चेष्टा की है। मृत्यु के गर्भ से नवजीवन बाहर निकलता है। तो वो कहती हैं कि मैं ये जो बाकी सेल्स हैं इनको मैं कैसे छोड़ दूँ, क्योंकि जहाँ तक संभव है इनको भी मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। और वो बार बार बताती हैं कैसे एक एक सेल्स को वो इंटेग्रेट कर रही थी, कोशिका को नए शरीर के साथ। 1972 में वो अपने नए शरीर का वर्णन करती हैं, सिर से लेके कमर तक, और पूरा डिटेल में उनका वर्णन है, संक्षिप्त डिटेल है। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं, ये मार्च 1972 की बात है, उसके बाद वो हम सब जानते हैं कि माँ को बहुत पीड़ा से जाती हैं, खासकर अंतिम 6 महीने। तो लोगों को ये पीड़ा समझ नहीं आती थी उस समय, शायद या तो चीज़ें प्रकाशित नहीं हुई थी या लोग पढ़ते नहीं थे, क्योंकि एजेंडा ये तो नोट्स ऑन द वे में ये कॉन्स्टेंटली आ रहा था। और उसे माँ ने ये सब लिखा है, कहती हैं कि मेरा पुराने देह के साथ मानव देह के बाद साथ केवल एक बंधन बचा है, वो है पीड़ा का बंधन। और वो कहती पेन इज द फॉल्सहुड ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। तो वो जैसे ही उस देह के साथ एफर्ट करती हैं कि इसके अंदर जो अंतिम रेजिस्टेंसेज हैं वो भी एनल हो जाएं, वो भी रूपांतरित हो जाएं, तो असीम पीड़ा का अनुभव होता था। वो पीड़ा क्यों होती है, स्वाभाविक है। अगर हम देखें अपने हम सब के जीवन में पीड़ा का मूल स्रोत क्या है, एक ही स्रोत है। वैसे तो अलग अलग सफरिंग लोग बताते हैं, और उसका स्रोत है भगवान से अलग होना, ये सेंस ऑफ सेपरेशन। तो उस महाअंधकार में चली गई हैं माँ, जहाँ पे कंप्लीट सेंस ऑफ सेपरेशन है, मतलब वहाँ आप ला नहीं सकते, और शरीर में वो बोन्स इन सब के द्वारा रिप्रेजेंटेड है। और माँ उस पीड़ा को सहन करके उसको रूपांतरित करने की चेष्टा करती हैं। और उस दिन सुबह सुबह एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, अचानक चंपकलाल जी माँ का हाथ देखते हैं, उसी दिन दैवी प्रेरणा होती है उनको, और किसी दिन उन्होंने नहीं देखा। वो कहते हैं एकमात्र उसी दिन 17 नवंबर को सुबह में वो माँ का हाथ देखते हैं, और वो अचानक कहते हैं अरे माँ की तो लाइफ लाइन बहुत छोटी है, ये तो इनको तो बहुत पहले, अगर फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको तो बहुत पहले माँ को देह त्याग कर देना चाहिए था. और श्री अरविंद के हाथ की लाइफलाइन बड़ी थी लेकिन ये रोल रिवर्सल होता है, आपस में ही होता है. और हम सब जानते हैं श्री अरविंद माता जी को कहते हैं, जब माँ कहती है मैं जाना चाहती हूँ, श्री अरविंद कहते हैं नहीं, क्योंकि एक को तो जाना है और बाकी सब में, क्योंकि देह से जुड़ के आप उस एक प्रकार का काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे और काम हैं जो विश्व में करने हैं जो नहीं कर पाते हैं. तो श्री अरविंद उनको आदेश या कमांड या जो भी हम कहें, कहते हैं कि नहीं, आपका देह ज़्यादा सूटेबल है और ये कार्य तो आपको ही पूरा करना है. यू हैव टू फुलफिल द योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो बस उसी के बाद सारी 1950 से 56, 62, 67, 69, फिर 72, 73, ये एक क्रम है जिसको कभी और हम बात भी किए इसके बारे में अलग जगह. तो आज हम लोग प्रार्थनाओं के कुछ ऐसे अंश पढ़ेंगे. अपने आप ये हम लोग यात्रा में चलते चलते एक ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पर इसका एक हिंट मिलता है. हम लोग ये सोचते हैं कि अरे कितना अच्छा है ना, भगवान बन गए, कुछ भी कर सकते हैं. श्री अरविंद एक जगह कहते हैं लोगों को बस मिरेकल देखना पसंद है. तो मिरेकल देखने के लिए आपको ऊपर में रहना है, प्राण तत्व की जो अंधकार की शक्तियाँ उनको भी यूज़ करना है, क्योंकि मिरेकल्स किसको हम कहते हैं, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए वो हमारे लिए मिरेकल है. तो चाहे वो सत्य से डेविएट कर रही हो. तो श्री अरविंद ये कहते हैं कि लोगों को यही समझ आता है और लोगों को यही लगता है कि अरे कितना अच्छा है ना, एक बार आपने साधना की, तपस्या की, आप भगवान बन गए. मानव बुद्धि की ये कल्पना, तो भगवान बन गए तो सब कुछ आप कर सकते हो अपने लिए, दूसरों के लिए. ये नहीं मालूम कि जब भगवान बनने के मार्ग में आपको सब कुछ अंदर से त्यागना होता है. आपके अंदर कोई भी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई भी एक कामना शेष है तो यू कैनॉट, पहली बात तो ये. और जब आप बन जाते हो तो आप किसी व्यक्ति की के अधीन नहीं कार्य करते हो, आप केवल डिवाइन विल के अधीन होकर कार्य करते हो. और वो विल जो दैवी संकल्प है वो माँ के लिए क्या है, ये हम कमांड बार बार सुनते हैं कि रियलाइज करने के बाद आपको त्याग करना है ये सब और पृथ्वी की ओर मुड़ना है और पृथ्वी के अंदर उतर के काम करना है. ये एक बहुत पीड़ादायक चीज है. जब तक हम लोग बाहर कभी नहीं गए, सॉरी मतलब शायद ये अटपटा सा लगे लेकिन मुझे ये बहुत सटीक लगता है, जैसे हम लोग कभी बाहर नहीं गए माने भारतवर्ष में रहते हैं, तो हमको पता नहीं होता. क्या पता नहीं होता कि बाहर जाने से कितनी पीड़ा होती है. सब है, भोग विलास है और बहुत पीड़ा होती है. अभी इस पीड़ा को किसको समझा सकते हैं. फिर आते हैं जब वापस तो लगता है कि सांस आ गया. तो ये जो पीड़ा है धरती के, पृथ्वी के साथ, मेटेरियल जड़ तत्व के साथ आइडेंटिफाई करना, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर, केवल भगवान अवतार के रूप में ये करते हैं. और इसी से हमारे यहाँ की रामायण में जो कथा है उसमें माता सीता को बार बार भूमिजा कहा गया. तो वैसे तो वो डॉटर ऑफ, वो कौन है, तो साक्षात अगर हम कहानियां पढ़ें तो उसे मनुष्यत रूपा ने श्री राम सीता से वरदान लिया हुआ है, जब रामायण हुई भी नहीं है, कि आप हमारे घर पे आइए, जन्म लीजिए हमारे गर्भ से. तो माँ सीता और भगवान राम कहते हैं ठीक है मैं आऊँगा. उसके बहुत बाद में रामायण की कहानी होती है. तो वो दो लेवल्स हैं, एक जहाँ वो जगत जननी का रूप है, दूसरा जो भूमि में प्रकट होती हैं. क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म में इसको इस तरह से कहा गया है कि द सन ऑफ गॉड एज द सन ऑफ मैन. तो ये जो आइडेंटिफिकेशन होता है जब एक दिव्य सत्ता पार्थिव शरीर को वरण करती है, ये एक अद्भुत घटना है. ये केवल अवतार करते हैं और उसका कारण होता है कि जड़ तत्व को रूपांतरित करना है. तो माँ को अब जैसे जैसे उनका मिशन करीब आ रहा है, वो हम लोगों ने पढ़ी है पूरी सीरीज में, अब फिर से एक बार माँ के अंदर उनको पता है कि अब क्या आने वाला है और इसलिए उनके अंदर ये एक प्रार्थना उठती है. इस प्रार्थना की एग्जैक्ट डेट नहीं है, हालांकि ये सितंबर 24, 1917 के अंदर दी गई है और उसमें प्रारंभ में ये आता है कि मैं एक के बाद एक सारी सीढ़ियां चढ़कर सर्वोच्च से एक हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद वापस बाहरी चेतना में आती हैं डिसेंड करके स्टेप बाय स्टेप. Thou has subjected me to a hard discipline. Rung after rung, I have climbed the ladder which leads to thee. And at the summit of the ascent, thou hast made me taste the perfect joy of identity with thee. योग वहां समाप्त हो जाता है. ट्रेडिशनल योग तो इसके भी पहले समाप्त हो जाता है. ये तो एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर योगीज, भगवान से मिल गए, भगवान से जुड़ गए, भगवान से एक हो गए. लेकिन सीमा का योग इसके बाद देखा जाए तो जो नई चीज है वो इसके बाद प्रारंभ हो रही है. देन उसके बाद ओबीडियंट टू thy कमांड, रंग आफ्टर रंग आई हैव डिसेंडेड टू आउटर एक्टिविटीज एंड एक्सटर्नल स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, री एंटरिंग इन टू कॉन्टैक्ट विद दीज वर्ल्ड दैट आई लेफ्ट टू डिस्कवर दी. भगवान का कमांड है नहीं, वो तो हुआ है, औरों ने भी किया है. अब आप इस बाहरी चेतना में वापस आती हैं. अब कुछ दिन के बाद माँ ये लिखती हैं, लॉर्ड हाउ मेनी टाइम्स वीकनिंग इन फेस ऑफ दाई कमांड. कमांड क्या है कि बाहरी चेतना में आके आपको काम करना है. अब ये जैसे जैसे हम लोग आंतरिक चेतना का अनुभव होता है या थोड़ा भी ऊपर, तब पता चलता है ये कितनी पेनफुल है. तब तक नहीं पता चलता है, तब तक ये है कि यही तो है सब कुछ. तो कहती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं, I have prayed to thee, spare me this calvary of the terrestrial consciousness, let me merge in thy supreme unity. आप देखिए ये कैलवरी क्या है. कैलवरी वो स्थान है जहां जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था. अब वो क्रॉस से कम नहीं है. क्यों? क्रॉस किस चीज का सिंबल है कि भगवान की सारी चेतना को आपने फिक्स कर दिया, नेल कर दिया, नेल्ड ऑन द क्रॉस. आप दिखाओ तुम भगवान हो, यही तो स्टोरी है. अगर देखा जाए उसके मूल में यही तो स्टोरी कि आप दिखाओ तुम, तुम्हारे सारे दिव्यत्व का चैलेंज. ये कई तरह से आती है, प्रहलाद से, जब अलग अलग जगह पर अलग अलग की, तुम्हारा भगवान कहाँ है, जड़ तत्व, अच्छा दिखाओ तुम. रावण कहता है बार बार, अच्छा हो तुम कौन, मैं अभी माता सीता का जब वो अपहरण कर लेता है, हो तुम कौन, जानती नहीं हूं मैं कौन हूं. और तब उस समय हम देखते हैं कि वो भूमिजा उठाती हैं एक तीर, कहती हैं इसको बस पार मत करना. तो अगर इतना शूरवीर है इसको पार करके दिखा, घबरा जाता है. तो यहां पर वो आइडेंटिफाइंग विद द टेरेस्ट्रियल कॉन्शियसनेस, इसको माँ कैलवरी कहती है कि सच में मुझे आना है. पर साथ में लिखती हैं, बट माई प्रेयर इज कावर्डली, आई नो इट, फॉर इट रिमेन्स फ्रूटलेस. भगवान इसको ग्रांट नहीं करेंगे, ये वीक प्रेयर है और वो ग्रांट नहीं करते हैं. फिर उसके बाद July 12, 1918, ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रार्थना है जिसका प्रारंभ ऐसे होता है, सडनली बिफोर दी ऑल माई प्राइड गेव वे. अब ये कौन से प्राइड की बात करी, धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है प्रार्थना में. प्राइड होता है ना, प्राइड से कहां से आता है, हम थोड़े ऊंचे हैं. आप जैसे से ऊंचे उठता है व्यक्ति तो प्राइड आता है. यहां प्राइड उस सेंस में यूज किया है जो सर्वोच्च के साथ आइडेंटिफाइड है. शेरविंद इसको यूज करते हैं अपनी पोयम इन्विटेशन में, आई एम द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड प्राइड. अगर लेजिटिमेट प्राइड तो वो इसी का है कि इवन ह्यूमन लेवल पर नोबिलिटी, नोबिलिटी के अंदर एक प्राइड है, लेकिन वो प्राइड नेगेटिव सेंस में नहीं है, वो एक ह्यूमल है. यानी प्राइड का इससे भाव है कि आप सच में आप ऊपर उठे हुए हो, लेकिन चूंकि उनको अब साधारण चेतना में उतरना है, तो सडनली बिफोर दी माई प्राइड फेल. इस बात को माँ और जगहों पर भी बताती हैं. शेरविंद का एक पत्र है, शुरू शुरू में जब लोग शेरविंद पौंडिचेरी आए थे और कहते थे हम आपके मिशन से जुड़ना चाहते हैं, तो लोगों को क्या लगता था कि अरे तो इतने बड़े योगी हैं, हम जुड़ जाएंगे, हम योगी बन जाएंगे, हम भी भगवान जैसे बन जाएंगे. तो शिरविंद कहते हैं ये बहुत सीरियस काम है, और यदि तुम साधारण से साधारण चेतना से आइडेंटिफाइड होने को तैयार नहीं हो तो ये योग मत लो, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे आपको आइडेंटिफाई होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें काम होना है। जैसे आप किसी खांडवप्रस्थ की कहानी है तो आप वहां गए, तो देखिए दुर्योधन को बना बनाया राज्य मिलता है, पांडवों को क्या मिलता है? खांडवप्रस्थ। क्या नियति ने उनको लिखा है? इसको बनाओ, वहां सांपों से भरा हुआ है, कुछ भी नहीं है, सहायता आती है, लेकिन जिनको भगवान चुनते हैं, तो यहां वो कहती है माई प्राइड फेल। अब ईंट मट्टी कीचड़ कादो उसमें उतर के काम करना है। आई अंडरस्टूड हाउ फ्यूटाइल इट वॉज टू विश टू सरमाउंट वन सेल्फ इन थाई प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति में नहीं, मैं साधारण नहीं हूं। ये शब्द एक अनुभव के रूप में अगर देखें तो इट इज डिफिकल्ट इवन टू कंसीव, इसका तो अनुभव किया, मैं तो असाधारण हूं। थोड़ा भी लोग योग में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उनको ये भाव आने लगता है मैं विशेष हूं, मिलना जुलना बंद कर देते हैं लोगों से। योगी महाराज हो तो वहां मिलना बड़ा मुश्किल है ये करने लगते हैं। शेरविंद ने एक अलग कारण से, वो कहते हैं लोग मुझे खा जाएंगे, शेरविंद का कारण अलग था, इतने सॉफ्ट हैं, इतने स्वीट हैं, इतने प्रेम करते हैं उनके हृदय में, तो माने उनके साथ आप यहां रहो मैं जाती हूं। इसका जो मूल कारण है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अपने को शट कर लेंगे दीवारों के पीछे तो हम शेरविंद जैसे बन जाएंगे, और शेरविंद कहते हैं अगर मैं बाहर आ जाऊंगा तो पीपल विल ईट मी अप, तो बिकॉज माँ कहती है उनके दोनों के बीच में यू स्टे मदर गोज, और कैसे मिलती हैं, घरों में जाती माँ की कहानी जब पढ़ेंगे हम लोग आश्चर्य होता है, माँ वहां आई, लोग बताते हैं इस घर में भी माँ आई थी, यहां बैठी थी, हमने ये बनाया था, उन्होंने इसको चखा था, हम कल्पना नहीं कर सकते कि कैसी लीला उन्होंने की है। एंड आई वेप्ट वेप्ट अबंडेंटली एंड विदाउट कंस्ट्रेंट द स्वीटेस्ट टीयर्स ऑफ माई लाइफ। अब इसके ऊपर मां की एक पूरी व्याख्या है, 1954 का एक, भूल रहा हूं मैं शायद मई का, जो सर्च करना चाहे स्वीटेस्ट ईयर्स के नाम से, 1954 का एक मां का एक्सपीरियंस है 1954 का। उसमें किसी ने पूछा कि मां ये आप रो रही हो, किस लिए रो रही हो, स्वीटेस्ट ईयर्स क्या होते हैं? मां कहती है जब वो करुणा जड़ तत्व से अपने को जोड़ लेती है और जब वो अवस्था देखती है मनुष्य की सब चीजों की, तो चैत्य के अंदर से एक भाव उठता है, एक दुख होता है उसके अंदर, साइकिक सौरो, साइकिक सौरो भी एक चीज होती है, तो वो, लेकिन वो सौरो वैसा सौरो नहीं होता है जो इगोइज्म के कारण होता है, मेरे साथ ऐसा हो गया वो हो गया, वो जो आंसू होते हैं वो अलग होते हैं, वो तो रोती रहता है आदमी पूरे जीवन, ये जो आंसू हैं ये अलग हैं। माँ कहती है साइकिक सौरों से ये जन्म लेते हैं, ये वही जो करुणा है उसका ये दूसरा रूप है। करुणा स्ट्रांग है, पावरफुल है, ये वहां से धाम से करुणा का भाव आया, अब वो उतरते चले आए यहां आके, वो भाव माँ कहती है बिल्कुल जैसे हाथ ऊपर की ओर एक एस्पिरेशन में बदल जाता है। किसी को तो अभिप्सा करनी है, मनुष्य की इस अवस्था को भी धारण करना है अपने अंदर जिसमें मनुष्य जी रहा है, और उसको खोल देना है ऊपर की तरफ, तो वो साइकिक सौरो है। और माँ स्वीटेस्ट टीयर्स का ये अनुभव बताती हैं, स्वीटेस्ट टीयर्स ऑफ माय लाइफ, वेप्ट अबंडेंटली एंड विदाउट कंस्ट्रेंट द स्वीटेस्ट टीयर्स ऑफ माय लाइफ, यस हाउ स्वीट दे वेर, व्हाट ए रिपोज एंड काम दे गेव, द टीयर्स दैट आई शेड बिफोर दी विदाउट एनी शेम और कंस्ट्रेंट। क्योंकि वो बस हम जैसे बन गई हैं तो नॉर्मली मनुष्य साधारण चेतना से आइडेंटिफाई नहीं करता है, इसलिए एक समय आता है, एक जगह माता जी इसको एक्सप्लेन करती हैं कि जब आपको यह अनुभव होता है जब विश्व चेतना में प्रवेश करते हो कि संसार का कोई भी ऐसा कृत्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, इट्स इम्पॉसिबल। इसीलिए वो बार बार कहती हैं अगर तुम राइट रॉन्ग के कंसेप्ट में रह रहे हो तो तुम भगवान को नहीं पा पाओगे, ये तो और योगियों ने भी बताया है, यू कैनॉट, बिकॉज आप स्वयं को एक दायरे में बांध रहे हो, वो जरूरी है एक एक स्टेज ऑफ एवोल्यूशन में, बट एक स्टेज होती है जब आप उसके पार चले जाते हो। और फिर जब आप काम करने उतरते हो. वॉज इट लाइक ए चाइल्ड इन द आर्म्स ऑफ इट्स फादर, बट वॉट ए फादर. ये अनुभव रियल, मतलब हम सब की परिधि के अंदर है. चैत्य सत्ता से जुड़ के जब हम संसार को देखते हैं तो एक अलग भाव अंदर में जागृत होता है, और उस समय सबसे उपयुक्त मुहूर्त होता है कि भगवान अपनी गोद में हमें ले लेते हैं. उनको पता है ये मेरा बच्चा, ये क्यों दुखी हो रहा है, ये अपने लिए दुखी नहीं हो रहा है, किंतु संसार की अवस्था देख के. कई बार लोग बोलते हैं, एक बार किसी ने कहा कि शिव जी क्यों विलाप कर रहे थे माता सती को लेके, कैसे भगवान है. मैंने कहा भगवान है इसीलिए विलाप कर रहे हैं. क्यों? जो संसार जगत जननी मां का परित्याग कर देता है उसके लिए आप विलाप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे. ही गोज अराउंड द क्वार्टर्स कि माता सती वो क्या कह रही हैं, यही कि शिव को भी यज्ञ में बुलाओ, इटर्नल के बिना यज्ञ पूरा कैसे हो सकता है. लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं प्रजापति, कहते नहीं हमारे तो रूल्स रेगुलेशंस हैं उससे चलेंगे, शिव जी तो टोटल फ्रीडम है, उनके पास कोई रूल नहीं है, कोई बंधन नहीं है, ऐसा ऐसा हमको नहीं चाहिए अपनी क्रिएशन के अंदर. पर माता सती जाती हैं और फिर उनका जो हम सब जानते हैं वो यज्ञ में शुद्ध हो, वो एक पूरी स्टोरी है. तो शिव विलाप करते हैं, राम का विलाप देखिए, जो भूभार हरण करने आए हैं, जो धर्म के अलावा कुछ सोच नहीं सकते, और जब माता सीता का हरण हो जाता है तो ये सब जो टीयर्स हैं. फिर ही टेक्स बट वॉट ए फादर, राम से भी ज्यादा माता सीता. माता सीता की स्टोरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है. वो इतनी दूर आई है, रावण को उन्होंने बुलाया है, किस लिए, कि ये मेरा द्वारपाल है बदल जाए, खींच करके आता है, लेकिन कैसे ले जाता है. तो वो जो उनके हृदय में जो भाव उठे होंगे उसको आप किसी सीरियल में कैप्चर नहीं कर सकते. व्हाट सब्लिमिटी, व्हाट मैग्निफिसेंस, व्हाट इमेंसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड व्हाट पावर, व्हाट प्लेनिट्यूड इन द रिपोज रिस्पॉन्स. फिर कुछ समय, कुछ पंक्तियों के नीचे माँ कहती हैं, फ्यू डेज बैक आई हैड नोन, आई हैड हर्ड, If thou respondest frankly and without any constraint before me, many things will change. A great victory will be won. तो ये विक्ट्री के लिए वो उसमें उतरती हैं. और अब जो आती है लास्ट पार्ट इस प्रार्थना का, जिसको शेरविंद ने ट्रांसलेट किया है, ये लिख करके, अगेन मेरे फेवरेट उस पैसेजेस में से है, केवल लगाना नहीं चाहिए, दिन रात स्मरण करना चाहिए. यदि करेंगे तो किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं रहेगी. क्यों, क्या ऐसी क्या बात है इसमें. लेट मी स्टैमर माई होमेज, आई हैव क्राइड टू दे विद द जॉय ऑफ ए चाइल्ड. अब वो कह रही है उन्होंने कोई चीज डिस्कवर की है, अब वो सबके साथ शेयर करना चाह रही है. क्या अद्भुत है ये प्रार्थना. ओ सुप्रीम एंड ओनली कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट कौन होता है, जिसे आप सब शेयर करते हैं. लोगों को क्या चाहिए, कोई मिल जाए दोस्त जिससे शेयर करें, क्या करेगा, आपको तो थोड़ा कंधा दे देगा, बाद में कहेगा थैंक गॉड हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि वो क्या एडवाइस देगा, एडवाइस भी अगर देगा तो क्या देगा वो. तो ओ सुप्रीम एंड ओनली कॉन्फिडेंट, दाउ हु नोएस्ट बिफोर हैंड ऑल वी कैन से टू दी, बिकॉज दाउ आर्ट इट्स सोर्स. ये तो जीवन को अगर हम देखें तो पता चलता है कि जितनी भी कठिनाइयां आती हैं पहले से भगवान ने कुछ अरेंज किया हुआ है हमारे साथ साथ चलने के लिए. एक उनका वरदहस्त साथ चलता है. तो जब हम कठिनाई की ओर देखते हैं तो पीड़ा में होते हैं, जब हम वरदहस्त की ओर देखते हैं तो बिल्कुल सारी चीज बदल जाती है, क्योंकि उनको पता है कि इसको अभी आग से गुजरना है. तो पहले से उनका वरदहस्त साथ चलता है. ओ सुप्रीम एंड ओनली फ्रेंड, दोस्ती सबसे रखिए, पर दोस्त तो केवल भगवान है. ये नहीं कह रहे ओनली फ्रेंड का मतलब आप, ओनली फ्रेंड वो भी कैपिटल एफ से, क्यों मित्र लॉजिकली भी, मैं कई बार ये बात कहता भी हूं, लॉजिकली फ्रेंड से आप क्या अपेक्षा करते हो, कि भाई जब आपको कोई समस्या है तकलीफ है तो फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड. आधे लोग तो आपका फोन नहीं उठाएंगे, 99%. और टाइम पर आप खुद ही नहीं कह सकते, पर भगवान से अगर नाता जोड़ लो तो 24/7 एक ही फ्रेंड है। और इसका मैंने देखा है लोगों के जीवन में, एक व्यक्ति जो बहुत डिप्रेशन में था कई वर्षों से, थी राधर, मैंने केवल एक ही बात कही, मैंने कहा तुम किसी को मानती हो? बोली हाँ, कृष्ण को। मैंने कहा तुम उनको मित्र बना सकती हो? बोली हाँ, विद इन फ्यू डेज। पर ये रियल चीज होनी चाहिए, ये दिल में आ जाना चाहिए कि यही एक मित्र है। और कौन मनुष्य समझेगा? सच तो ये है, मनुष्य तो खुद को नहीं समझता, दूसरों को क्या समझेगा। तो ओ सुप्रीम एंड ओनली फ्रेंड, आप सुप्रीम क्यों कह रही हैं? हायरार्की भी ले लो सब दोस्तों की, तो अल्टीमेटली तो वही दोस्त है। दाओ हु एक्सेप्टेस्ट, फ्रेंड कैसा हो? फ्रेंड वो नहीं जो हमको कहे हम मुझे तुम्हारी ये चीज पसंद नहीं है, ये कैसा मित्र हुआ? मित्र जो आपको स्वीकार करता है जैसे आप हैं। दाओ हु एक्सेप्टेस्ट, दाओ हु लवेस्ट एंड अंडरस्टैंडेस्ट जस्ट एज वी आर, बिकॉज इट इज दाई सेल्फ हु हैज सो मेड अस। आपने हमें जैसे हैं बनाया है, तो आप हमको ये नहीं किए, आपसे क्या छुपाना? आप देखिए सारी कनेक्टेड है, प्राइड फेल, संसार के सामने हम कुछ भी अपने को शो कर रहे हो, हालांकि वो भी अच्छी चीज नहीं है, लेकिन आपके सामने क्या छिपाना है प्रभु? एक मीराबाई का भजन, भली बुरी हूं जैसी प्रभु जी राखो अपने पास। एक और भजन है जो श्री रामकृष्ण परमहंस को प्रिय था, अब ये पता नहीं चलते हैं तब तक जब तक इसका अनुभव के द्वार से व्यक्ति ना गुजरे। भजन है, यह ले लो मां पाप तुम्हारा, यह ले लो मां पुण्य तुम्हारा, निज चरणों की भक्ति मुझे दो। मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं बड़ा वर्चुअस कहलाऊं, ये कहलाऊं वो कहलाऊं, आप इसको ले लो, लोग क्या कहेंगे। एक इसका एक उर्दू में भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक सूफी शेर है, वो बहुत ही मिस्टिक है, और उसमें पोइट कह रहे हैं, गदनारी गमारी कहें सो कहें, मैं तो पिया से नैना मिला ही रे। लोग मुझे क्या कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे, कोई बात नहीं, मैं तो अपने पिया से नैना मिला ही रही, वो पिया ऑफ कोर्स डिवाइन। तो यहाँ वो बात हो रही है माँ सुप्रीम एंड ओनली फ्रेंड, आपसे अधिक कौन समझ सकता है। और आपके सामने हमको कुछ छिपाना नहीं है कि अरे हम बहुत अच्छे हैं वो खराब है, तो भगवान कहेगा अच्छा अभी तुम्हें दिखाऊंगा मैं कि तुम कैसे हो। सबसे पहले तुम मतलब तुम्हारे अंदर जो जो चल रहा है, फिर हमारा परिचय। ओ सुप्रीम एंड ओनली गाइड, Thou who never gainsayest our higher will, because it is thyself who willest in it. It would be a folly to seek elsewhere than in thee, for one who will listen, understand, love and guide, since thou art always there to do it and never will thou fail us. ये एक बार समझ आ जाता है, भगवान से हॉटलाइन बड़ी सिंपल है, कोई बीच में फाइबर इंटरनेट कुछ नहीं चाहिए, इनर नेट चाहिए। इनर नेट भी बहुत सिंपल है, एक बार लाइन एक्टिवेट हो गई, माँ माँ माँ, बस बार बार शेरविंद कहते हैं कॉल द मदर, कॉल द मदर्स नेम। एक बार ये रट लग जाती है ना, एक क्लैरिटी आ जाती है, उसके बाद जिंदगी हसीन है लिटरली, क्योंकि वो आप कभी भी उनसे आपका कनेक्शन हो गया है, आप वो प्रेम गाइडेंस, गाइडेंस ही नहीं कि वो ऐसे बता रहे हैं, आपने कह दिया ना ले जाएंगे आपको, जस्ट आप एंड्योर करो फेथ के साथ, ही नोज व्हाट इज बेस्ट। तो आपसे अधिक कौन सुन सकता है पीड़ा उनके सामने कह दो, कौन समझ सकता है, प्रेम कर सकता है, गाइड कर सकता है। और अंत में क्योंकि आप तो सदैव हो, आप हमारे अंदर के भावों तक को पढ़ते हो, हमारे मोटिव्स को जानते हो, लोग तो बाहर से देख रहे हैं लेकिन आपको तो वो भी पता है कि हमारे मोटिव्स क्या हैं, जिनको कोई नहीं देख पा रहा। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या आता है, Thou hast made me know the supreme, the sublime joy of a perfect confidence. और इसीलिए एक बड़ी सिंपल सी चीज है जो एक साधना पॉइंट ऑफ व्यू से, राइटिंग टू द मदर. और जब विशेष समस्या हो तो एक स्पेशल बुक, दैट्स राइट. जब खास प्रॉब्लम तो थोड़ा एक अलग से भी, और नहीं तो जस्ट राइटिंग टू द मदर. क्या रोज कई चीजें होती हैं छोटी मोटी, कुछ नहीं आज माँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ खास नहीं हुआ. जिंदगी जैसे चल रही थी चली, पर आपको तो पता होगा, पता नहीं अंदर में क्या क्या हुआ, हमें नहीं मालूम. ये पता है, एक कॉन्टैक्ट जोड़ता है, और यही कॉन्टैक्ट है जो काम आता है. और ये जॉयसली करना चाहिए, काम आने के लिए नहीं. मित्र को आप ये नहीं कि हमेशा वो आपको के काम आएगा. द सबलाइम जॉय ऑफ ए परफेक्ट कॉन्फिडेंस एंड एब्सोल्यूट सिक्योरिटी. जब तक हम किसी बाहरी अवलंब में सिक्योरिटी ढूंढेंगे, अब मुंडक उपनिषद में तो बड़े सुंदर ढंग से कहा गया है, व्हाट इज द अल्टीमेट अवलंब, वो कहते हैं ओम. दिस इज द हाईएस्ट यू नो अवलंब आपका. लेकिन अब ओम थोड़ा इम्पर्सनल सा लगता है, माँ पर्सनल लगता है. दिस इज द हाईएस्ट सिक्योरिटी, परफेक्ट कॉन्फिडेंस एंड एब्सोल्यूट सिक्योरिटी. माँ यहां पर एब्सोल्यूट कह रहे हैं, ए टोटल अनरिजर्व्ड एंड अनवार्निश्ड सरेंडर. ये वर्ड, क्या वर्ड यूज किया, अनवार्निश्ड. वार्निश्ड क्या होता है, लिपापोती. माँ देखिए हम कितने अच्छे हैं, देखिए आप हम सरेंडर करें. अच्छा तुमने सफेद कपड़ा पहन लिया तो ये समझने लगे कि तुम बहुत अच्छे हो. दिखाई दे रहा है मुझे तुम्हारे हृदय में क्या क्या चल रहा है. सब सुंदर असुंदर, साधु असाधु, सब कुछ उनके चरणों में. और ये तब तक नहीं कर पाते हम जब तक हमारे अंदर ये भाव है कि ये राइट है वो रॉन्ग. वी कैन नॉट, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली माइंड शट ऑफ करता है, कई चीजें हमको दिखाई नहीं देती हैं. तो अनवार्निश्ड सरेंडर विदाउट एफर्ट और कॉन्स्ट्रेंट, इसका लक्षण ये होता है कि अनवार्निश्ड सरेंडर हुआ है कि नहीं. जब कई वर्षों बाद हम इतने साल से साधना कर रहे हैं, भाई अगर ये भाव है कि हम साधना कर रहे हैं तो अभी साधना प्रारंभ नहीं हुई है, साधना केवल भगवान करते हैं. मनुष्य तो कहते चल तू मेरे साथ. लोगों की दृष्टि में अर्जुन महानायक है जो युद्ध लड़ रहा है. अर्जुन से पूछो ये जो पीछे है ना या आगे बैठे हैं, ये सब इन्हीं की करतूत है. मैंने तो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, बट फॉर हिम ये तो असंभव युद्ध था. एंड जॉयस लाइक ए चाइल्ड आई हैव स्माइल्ड एंड वेप्ट एट वंस बिफोर दी ओ माई बिलवेड. ये बिलवेड कौन होता है, जिसे आप कुछ नहीं छिपाते हो, वो बिलवेड है. भगवान का जो बिलवेड का रूप है, आप किसी ह्यूमन बीइंग को बिलवेड हो नहीं सकता है. हमेशा एक कॉर्नर, कई बार कभी कभी लोग पूछते हैं कि मैं क्या सारा अपना, मैं विवाह या किसी चीज के लिए मैं अपना सारा पास्ट बता दूं, तो यही है ना मूर्खता मत करना. कौन समझेगा आपको, आपका क्या पास्ट है क्या, आप तो खुद नहीं जानते कि जो हुआ वो क्यों हुआ कैसे हुआ. लेकिन भगवान वो सब जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपाना केवल हमारे और उनके बीच में एक बैरियर लाना है. तो वो शुरू होती है प्राइड फेल. आपको ये प्राइड छोड़ना, बिना प्राइड को छोड़े ये नहीं कर सकते. जब तक प्राइड रहेगा मैं बहुत अच्छा हूं, तो आप भगवान की नजरों में लगता है ना गिर जाएंगे. लेकिन उनका तो काम यही है पतित पावन. अगर आप इस भाव से कि मैं प्राइड, मैं बहुत विशेष हूं, तो भगवान कहते अच्छे अच्छी बात है, विशेष लोगों का मेरे पास क्या काम है, तुम तो ऑलरेडी बहुत बड़े साधक हो. ठीक है, तो ये अद्भुत प्रार्थना है. और फिर एक ये अंतिम प्रार्थना है जापान में जो माँ लिखती हैं. अब जो ये बात हो रही है ना कि अंतिम प्रार्थना, यानी और भी लिखी होंगी लेकिन उन्होंने कई पेजेस फाड़ के जला दिए क्योंकि बहुत ही पर्सनल थी, पर कुछ एक पर्सनल प्रार्थनाएं उन्होंने इंक्लूड करी है, उनमें से ये एक है. ये उनके पहली वाली जो प्रार्थना हमने पढ़ी वो उनके पर्सनल जीवन से नहीं है, वो तो एक कॉस्मिक जीवन है जिसमें वो धरती के साथ आइडेंटिफाई करती हैं, लेकिन ये उनके पर्सनल जीवन से जुड़ी है. और ये जापान की अंतिम प्रार्थना है. और वो प्रार्थना ऐसे कि उन्होंने स्वयं, अब लोग कहते हैं ना कि भगवान अगर विवाह करेंगे तो किसका चयन करेंगे, मां ने किसका चयन किया, उन्होंने मिथ्यात्व के असुर उसको अपने साथ बांध के कि इसको मैं रूपांतरित कर देती हूं, ये रूपांतरित हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाकी सब, ये जो सबके गढ़ में जो लास्ट बैठा हुआ है। और इसीलिए कई बार लोग ये चीजें नहीं तो वो नाम लेके कुछ भी लिखते माने का, उसका नाम लेने मात्र से मिथ्यात्व की शक्तियां आसपास आ जाती हैं। और कैजुअली हम देखेंगे बायोग्राफी में कहीं पर भी वो नाम लेकर के, मतलब दिस इज अब क्या कहा जाए। तो माने बीड़ा उठाया था, भगवान को प्रॉमिस किया था कि मैं इसको रूपांतरित करूंगी, और जो भी उन्होंने प्रयास किए किंतु प्रयास सारे विफल होते हैं। विफल क्यों होते हैं कि नहीं बदलना चाहता, वो अंतिम असुर है, लास्ट सीढ़ी है। इसलिए बहुत बाद में माँ कहती हैं चार असुरों में से बाकी सब कन्वर्ट हो जाते हैं, यही मिथ्यात्व है जो कन्वर्ट नहीं होता है। वो भी हिंट है इसका कि ही हैज एक्सेप्टेड कन्वर्शन, लेकिन वो कहता है कि मैं पूरी तरह बदलने के पहले बहुत उत्पात करूंगा। क्यों उत्पाद करेगा? क्योंकि उसको सबसे केयरफुली हम सब ने अपने अंदर पाला पोसा है। और कैसे? यही सब भाव से मैं हूं, मिथ्यात्व वहीं से शुरू होता है। मैं महान हूं और बढ़ गया, मैं योगी हूं, अच्छा तो वो सारा मिथ्यात्व कैसे अंदर में पलता है। तो मां से किसी ने कहा अभी इसको मार क्यों नहीं देती, कहती तुम सब खत्म हो जाओगे, सब उससे पोषित हो रहे हो। अगर इसको यहां तक कि वो शेरविंद का एक फेक शेरविंदो बन के भी आता है, उसकी पूरी कहानी है। और वो क्या करेगा, मां कहती ये आएगा लोगों के जीवन में, वो एक बड़ा हार्श और क्रूएल प्रकार का रिलीजन बनाने की चेष्टा करेगा शेरविंद के नाम पर, ये गलत है इसको खत्म कर दो, ये पापी है, ये एक प्रकार का रिलीजन वो प्रयास करेगा। और मां कहती सबको पता होना चाहिए कि शेरविंद ऐसे बिल्कुल नहीं है, द लॉर्ड इज ग्रेट एंड कॉम्पैशनेट एंड बेनेवोलेंट, वो करुणा में है, महान है, उनकी महानता उनकी करुणा में ही है। तो वो बताते हैं लेकिन वो प्रयास करेगा, वो फेक जो शेरविंद का रूप धारण करके आएगा, वही मिथ्यात्व का असुर। तो वो एक टाइम आता है जब वो कहती मैं विफल हो गई इसमें, अब मैं क्या करूं। तब माँ बताती हैं जब वो ऐसे प्रार्थनारत हैं कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो आपको वचन दिया था, वचन से आप ही मुक्त कर सकते हो या मार्ग दिखा सकते हो, मैंने तो अपना पूरा प्रयास कर दिया। और वो जो जो करता था वो तो एक बात ही अलग है, छोड़ दें हम उसको। तो माँ देखती हैं विजन ऑफ द सुप्रीम। माँ बताती हैं कि दो बार उनके जीवन में एकदम सुप्रीम का विजन आता है, माने विजन नहीं है, सुप्रीम आते हैं, उसको डिस्क्राइब क्या किया जा सकता है। बस पासिंगली कहती हैं मच मोर मैग्निफिसेंट देन द विजन ऑफ द गीता। वो सुप्रीम आते हैं और उनको अपने हाथों में उठा लेते हैं और ले जाके पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं, जापान से पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर जापान की क्या है, भारतवर्ष। वहां ले जाके वो रख देते हैं, कहां, शेरविंद के सामने। ये भी ऐसे होगा, ये अकेले नहीं होगा। अपने आप अगले दिन वही जो असुर जो रिफ्यूज कर रहा है कन्वर्शन, वो कहता है कि हम चलो पांडिचेरी चलते हैं वापस, थोड़ा घूम के आएंगे, टिकट विकेट मैंने सब इंतजाम कर दिए। और नेक्स्ट डे दे प्रिपेयर टू लीव फॉर पांडिचेरी। फिर पहुंचते हैं पांडिचेरी 24 अप्रैल, फिर बाकी 6 महीने वो बहुत फिर भी प्रयास करता है, लेकिन ये तो स्पष्ट था नाउ मदर हैज टू बी हियर। और एक दिन जब वो बहुत जो बाहरी रूप से मार्मिक प्रसंग है, माँ को बहुत तकलीफ पीड़ा देने की चेष्टा करता था, पर माँ ने चूंकि भगवान को प्रॉमिस किया था, वचन दिया था, वो उस पीड़ा को बेयर करती थी। वो उसका वो क्या कहता था, मैं जानता हूं कि तुम सुप्रीम हो, लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं सुप्रीम बना रही हो, श्री अरविंद को क्यों, उसकी समस्या ये थी, मुझे दे दो ना, तुम चाहो तो दे सकती हो, उसको ये पता था। तेओ ने भी यही ट्राई किया था. और फिर एक दिन बहुत आंधी तूफान आता है. अभी आने वाला है दिन 24 नवंबर को बहुत सारी घटनाएं होती हैं. लोग केवल श्री कृष्ण आइडेंटिफिकेशन, ये तो एक और घटना होती है 24 नवंबर को, ये है कि बहुत आंधी तूफान आ रहा है. माँ रह रही हैं अपने जो भी गेस्ट हाउस में और श्री अरविंद इस घर में. अचानक वो नलिनीता को बुलाते हैं और कहते हैं गो एंड फेच द मदर. तो सारे लड़के जाते हैं और माँ को लेके आ जाते हैं. उसके बाद माँ कभी नहीं जाती है. ये अपना जो भी बड़बड़ाता है कुछ दिन चला जाता है, वो एक अलग कहानी है. तो ये प्रार्थना है जब वो प्रयास करती हैं और विफल हो जाती हैं. कुछ महीने बाद वो, कुछ दिनों बाद वो टिकट लेते हैं और कुछ महीनों बाद वो आना प्रारंभ करते हैं. सिंस द मैन रिफ्यूज द मील आई हैड प्रिपेयर्ड विथ सो मच लव एंड केयर आई इनवोक द गॉड टू टेक इट. अब ये मील क्या है? अन्नम ब्रह्मेति, मेटीरियल क्रिएशन में पूरी तरह भगवान आ जाए, उन्होंने ये तैयार किया हुआ है. वो तैयार करके, लेकिन मनुष्य नहीं चाहता. अब यहां वो उस व्यक्ति की बात नहीं कर रही है, लेकिन मनुष्य मिथ्यात्व से भरा हुआ. अभी भी आप देख लीजिए, ये यूनिवर्सल बड़े बड़े गढ़ों में जहां ट्रेडिशनल योग की बात होती है, वेद वेदांत की, सब कुछ, जैसे ही ये बात आती है रूपांतरण की, श्री अरविंद की, खासकर माता जी की. किसी ने पूछा मुझसे कुछ दिन पहले, माँ तो फ्रेंच थी. मैंने कहा तुम्हारे कौन से शास्त्र में लिखा है कि भगवान फ्रेंच नहीं हो सकता? कहीं लिखा है शास्त्र में? मतलब ठीक है भारतवर्ष महान है, मैं तो पूरी तरह, लेकिन ये सोच लेना कि भगवान भारतवर्ष के बाहर कहीं भी कभी नहीं आया, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया. उनकी मर्जी, भगवान की तो मौज होती है. क्या पता उन्होंने असुरों के गढ़ में आकर के प्रारंभ किया काम, हाउ डू यू नो. तो ये एक अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस जो आप बड़े बड़े बाबा जी इनके पास, यहां तक लोग बोल जाते हैं कि अब त्रिकालदर्शी तो कोई नहीं हो सकता. एक बार एक टॉक मैंने कहा आप उनका पढ़िए रिकॉर्ड्स ऑफ योगा, और पहले तो आपका ये कथन जो है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, लेकिन लोगों को ये लगता है. आप ट्राई करिए ट्रेडिशनल योग में कहीं पर भी जाके, और इतना विशाल सारे तरह के रियलाइजेशन श्री अरविंद लेके बैठे हैं जो बता रहे हैं. देखा जाए तो एक ही होप है पृथ्वी और मैनकाइंड के लिए, वरना तो मोक्ष है या इल्यूजन है. लेकिन सब सुनने के बाद भी नहीं, हमारे तो बहुत सारे हैं ये है, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो सब आके अनुभव करके कृपा को, तो मेटीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में उनको नहीं दिलचस्पी है. तो हाँ, वो कहते हैं सिंस मैन रिफ्यूज द मील, और उनको यही समस्या होती है कि ट्रेडिशनल योग में इसकी बात क्यों नहीं हुई है. नहीं हुई है तो नहीं हो सकता है. सिंस मैन रिफ्यूज द मील I had prepared with so much love and care. I invoked the God to take it. क्या मैं इसका क्या करूं? मैंने तो जड़ तत्व में सब प्रकट कर दिया है, केवल आपका सैंक्शन चाहिए. इसको स्वीकार करना है कि ठीक है, उसके लिए सरेंडर चाहिए. वो सरेंडर नहीं कर रहा है. और वो हालांकि ये माने बाद में इस प्रार्थना पे पूरी एक कमेंट्री दी है कि ये उस घटना से रिलेटेड है. तो मैं यहां इसलिए कह रही है कि मनुष्य उससे पोषित है, मिथ्यात्व से, मिथ्यात्व स्वीकार नहीं कर रहा है. तो माँ कहती है अब तैयार तो मैंने कर दिया है, अब पता नहीं कब फुलफिल होगा, मैं आपको वापस ये दे रही हूं. तो अब इंटरेस्टिंग चीज होती, ओ माय गॉड दाउ हैस्ट एक्सेप्टेड माय इनविटेशन. भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि ठीक है होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये वो बताते हैं विजन में जो यहां पर नहीं रिकाउंटेड है, कि भगवान आते हैं कहते हैं दो मुझे, ये तो होगा लेकिन ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा. वो सुप्रीम ले जाते हैं श्री अरविंद के पास. इसीलिए जब माँ आती हैं तो पहली बार यही एक ही प्रश्न कहती है. मैं खड़ी थी साथ में और श्री अरविंद बगल में थे, मेरा कंधा उनके, मेरा सिर उनके कंधे के थोड़ा करीब था. बहुत विस्तार में वर्णन है कि बिल्कुल करीब. मेरे मन में एक ही प्रश्न था, क्या होगा इस बार, होगा? और श्री अरविंद केवल इतना कहते हैं यस. माँ कहती मैंने बोला नहीं, केवल उनके अंदर ये. और जैसे वो यस करते हैं, कहते हैं, वो सुप्रामेंटल फोर्स को डिसेंड करते हुए देखती हैं। ये उद्धरण वैसे कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मदर वॉल्यूम 3 में भी है। यस होगा। तो यहां पर Thou hast come to sit at my table, and in exchange for my poor and humble offering, Thou hast granted to me the last liberation. अभी last liberation क्या है? उन्होंने तो यह प्रण लिया हुआ है, वचनबद्ध हैं, किसके प्रति? भगवान के प्रति। My heart, even this morning, so heavy with anguish and care, my head surcharged with responsibility, are delivered of their burden. कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? यही कि संसार का दिव्य रूपांतरण होगा ही होगा। कितनी कॉन्शियस हैं इससे पता चलता है कि शी न्यू एवरीथिंग। तो वो देखती हैं कि ऐसे तो हो नहीं रहा है, तो जगत जननी माँ वो अपने अंदर उसको धारण करके कि सब मैंने बना दिया है, लेकिन मनुष्य अस्वीकार कर रहा है। अभी भी यही मनुष्य की लार्जली अवस्था है। बार बार माँ पूछती हैं कि आप तैयार है? श्री अरविंद बार बार कहते हैं नॉट येट, वर्ल्ड इज नॉट रेडी। 60s की बात है, बार बार वर्ल्ड इज नॉट रेडी, वर्ल्ड इज नॉट रेडी। उसमें भी आता है कि माँ कुछ तैयार करके जाती हैं, वो कहते हैं वर्ल्ड इज नॉट रेडी, लेकिन वो कंघी उठा के माँ के हाथ से 3 कंघियां अपने बालों में लगाते हैं। तो माँ कहती है उन्होंने मूल रूप से स्वीकार कर लिया, लेकिन अभी संसार को ये नहीं दे सकते। जगह जगह आता है, हम लोगों को तो लगता है वी आर रेडी, अब और क्या करना है। हम लोग तो पांडिचेरी हम आ जाते हैं या रहने लगते हैं, प्रणाम भी करते हैं, थोड़ी देर ध्यान भी करते हैं, कुछ ऑफरिंग भी करते हैं, तो हो गया। परंतु बीइंग रेडी टू रिसीव दैट न्यू क्रिएशन, सारा ओल्ड कॉन्शियसनेस को साफ करना पड़ेगा। और यहां पर माँ कहती हैं कि आपने मुझे इससे मुक्त कर दिया। मिशन की भी जो होती है ना, कि ये काम मुझे करना है, ये जो दिस इज माई मिशन, माई वर्क, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, या डिवाइन वर्क की बात हो रही है, उससे भी उनको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए माँ उसको लास्ट लिबरेशन कह रही है। नाउ आर दे लाइट एंड जॉयफुल एज माई इनर बींग हैज बीन फॉर ए लॉन्ग टाइम पास्ट, माई बॉडी स्माइल्स टू दी विद हैप्पीनेस एज बिफोर माई सोल स्माइल टू दी। ये ठीक है, अब इसकी जिम्मेदारी आपने ले ली है। और इसीलिए माँ बताती हैं कि 1920 से 1950 तक माँ कहती इतना ब्लिसफुल समय था। कहती मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था, मैं सब आके श्री अरविंद के सामने बस इतना कह देती थी माय लॉर्ड, वो सब अपने ऊपर लेके। कहती माँ कहती है सुप्रीम सिक्योरिटी, बट वन हैड टू बी एट ए मटीरियल प्लेन। उसके बाद शी सेड आई हैड टू डू बोथ द रोल्स। श्री अरविंद ने वो पीछे से वो पूरे कॉस्मिक उस पर काम करना प्रारंभ कर दिया। आई हैड टू प्ले बोथ द रोल्स। तो यहां पर वो पूरी जिम्मेदारी से मुक्त। एंड श्योरली हियर आफ्टर दाउ विल विड्रॉ नो मोर फ्रॉम मी दिस जॉय ओ माई गॉड, फॉर दिस टाइम आई थिंक द लेसन हैज बीन सफिशियंट। I have mounted the Calvary of successive disillusionments high enough to attain to the resurrection. अब देखिए Calvary फिर आ रहा है। अब यहां कौन सी Calvary है? Successive disillusionment। आप प्रयास करते हो जितने तरह से, अब उन्होंने तो ultimate प्रयास किए हुए हैं, लेकिन वो सब disillusionment नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। बाद भी supramental कॉन्शियसनेस इत्यादि बाद में ये बात आती है। शी कुड सी बट शी कुड गिव वेरी इजली। डिवाइन मदर के हाथ में सब कुछ है, इसलिए श्री अरविंद बार बार कहते हैं टर्न टू द मदर, क्योंकि शी कैन गिव यू, और उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, वो एकदम श्रद्धा समर्पण अभीप्सा यही मुख्य चीज है। तो कहती हैं जब मैं ये बार बार डिसइल्यूजनमेंट सारे प्रयास करके कि नहीं ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा, तब हम रिसरेक्शन माने न्यू बॉर्न होने के लिए तैयार होते हैं। एंड श्योरली हियर आफ्टर दाउ विल विड्रॉ नो मोर फ्रॉम मी दिस जॉय ओ माई गॉड, फॉर दिस टाइम आई थिंक द लेसन हैज बीन सफिशियंट। आई हैव माउंटेड द कैलवरी ऑफ सक्सेसिव डिसइल्यूजनमेंट्स high enough to attain to the resurrection. Nothing remains of the past. जो भी उन्होंने प्रयास किए थे वो सारे, वो कहती हैं अब सारे प्रयास वो देखती हैं कि विफल हुए, तो वो सब भगवान के को ऑफर कर देती हैं। ये देखिए वो ये नहीं कर रही हैं कि उसको खत्म कर रही हैं, उसको सब भगवान को तैयार कर दिया न्यू क्रिएशन, लेकिन वो अब उनको दे दिया, आपकी सुरक्षा में है, आप कब कैसे इसको करना चाहेंगे। अब जो आगे कह रही हैं बहुत सुंदर है कि नथिंग रिमेन्स ऑफ द पास्ट, लेकिन कुछ है जो बचा है। क्यों किया था ये सब उन्होंने, क्यों कर रही थी, वो एक प्रेम के वश, आउट ऑफ लव। तो कहती है नथिंग रिमेन्स ऑफ द पास्ट बट ए पोटेंट लव। और इस पावरफुल प्रेम की क्या निशानी होती है, यहां अंत में ये पंक्ति आती है, व्हाट इज द साइन कि आपके अंदर एक पोटेंट लव, विच गिव्स मी द प्योर हार्ट ऑफ ए चाइल्ड। बच्चा होता है ना, उसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं होता, किसी प्रकार की शो नहीं होती, जैसा है वैसा है, कोई दिखावा नहीं कर रहा उसके। आज ही किससे बात हुई, मैंने कहा यू नो व्हाट इज अवर बर्थ राइट, एक बच्चे से बात हो रही थी, क्या, मैंने कहा टू बी हैप्पी। अच्छा, बच्चों को देखो, दे आर हैप्पी नेचुरली, पेड़ पौधे पशु पक्षी दे आर ऑल हैप्पी नेचुरली, बट वी लूज इट। क्यों, हम डिजायर के चपेटे में आते हैं, वो घुमा घुमा के हमको ऐसे, ये नेचुरल नहीं, नहीं वो मिलेगा तो ज्यादा खुश, अब उसमें जो ऐसा चपेटा लगता है, क्यों, जो नेचुरल हैप्पीनेस तो बर्थ राइट है, भगवान सबको दे के भेजते हैं, इवन जो अपंग है। आप सरप्राइज होंगे, आप बच्चे देखिए, किसी के भी, सांप के बच्चे हों, अपंग बच्चे, या जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, दैट्स एन इग्नोरेंट वर्ड बट एनीवेज, आप किसी भी उसमें चले जाइए, बच्चे खुश रहते हैं, पर थोड़ा बड़े होते हैं, अरे बेचारा, अरे बेचारा, अरे बेचारा, ये नहीं है, वो नहीं, इसके पास ये कमी है, ये अभाव है। अब धीरे धीरे उनको अपने अभाव का बता बता के, ये सारी क्रिश्चियन मिशनरीज ने यही तो किया, भूखे नंगे लोग, भूखे नंगे लोग, अब हमें पहले आपने भूख जगा दी, सारा आप देखिए जगत डिजायर डिजायर से बड़ा बड़ा के, ये गैजेट वो गैजेट, आपके दुख के सारे साधन बना दिए। अब आपके पास थोड़ी देर को एसी चला जाते से परेशान हो रहे, पहले तो आपने, वो कहते हैं आप नेचुरली हैप्पी थे, हम कई लोग इस तरह से बड़े हुए हैं, हम सब जानते हैं, जमीन में सो लेना, कोई पंखा चला गया कोई बात नहीं, लाइट नहीं, ये नहीं कि ये सब नहीं होना, होना चाहिए, लेकिन इसके अधीन हो जाना। तो यहां पर उसका वर्णन है कि हार्ट ऑफ ए चाइल्ड एंड द लाइटनेस एंड फ्रीडम ऑफ थॉट ऑफ ए गॉड, एक और बच्चे जैसा उसका हृदय रहेगा, लेकिन उसके जो थॉट्स होंगे बहुत ऊंचाई में, बहुत विशाल क्षेत्र में, बहुत ल्यूमिनस प्रकाश से भरे हुए, इस तरह से उनके उसके थॉट्स होंगे। तो यहां पर उस स्टेट का जो लव का जो एक कौन सा लव होता है जो ऑल पावरफुल होता है, ये हम देखते हैं ना प्रहलाद की कथा में, वो प्रेम भगवान के प्रति इतना पावरफुल कैसे है, बहुत सरल है, वो क्वेश्चन नहीं कर रहा है, कहते नहीं है तो डैड बेसिकली ना, आई लाइक यू, आई लव यू, बट यू आर रॉन्ग। वहां कोई ये सब चीजें नहीं आ रही, कैलकुलेशन नहीं आ रहे हैं, एंड द थॉट ऑफ ए गॉड जो बहुत दूर बहुत विशाल प्रकाशवान क्षेत्रों में जो घूम रहा है, दैट इज द थॉट ऑफ ए गॉड, जो इस सारी सृष्टि का भार लेने को तत्पर है, जो कभी हतोत्साहित नहीं होता है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है। तो इस अवस्था का हम इसमें वर्णन देखते हैं, यहीं पर हम लोग रुकेंगे, एक बार इस प्रार्थना को फिर से पढ़ लें, ये अंतिम प्रार्थना है, और बिल्कुल आज के दिन से देखा जाए तो एक तत्व रूप में जुड़ी हुई है, इन इट्स एसेंस। सिंस द मैन रिफ्यूज द मील आई हैड प्रिपेयर्ड विथ सो मच लव एंड केयर, आई इनवोक द गॉड टू टेक इट। माई गॉड, दाउ हैस्ट एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन, Thou hast come to sit at my table, and in exchange for my poor and humble offering, Thou hast granted to me the last liberation. श्री अरविंद बार बार इस चीज को बताते हैं कि इफ द मदर वांट शी कैन गिव यू द सुपरमेंटल रियलाइजेशन एट वंस. ये श्री अरविंद के वर्ड्स है. लेकिन क्या कंडीशन है, कहते हैं कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, सिंसेरिटी, टोटल सरेंडर, नोबडी इज एबल टू फुलफिल. सिंपल सी जो कंडीशन है, माई हार्ट इवन दिस मॉर्निंग सो हैवी विद एंग्विश एंड केयर, माई हेड्स आर चार्ज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिलीवर्ड ऑफ देयर बर्डन, नाउ आर दे लाइट एंड जॉयफुल एज माई इनर बींग हैज बीन फॉर ए लॉन्ग टाइम पास्ट, my body smiles to thee with happiness as before my soul smiled to thee, and surely hereafter thou wilt withdraw no more from me this joy. antim surrender ki mera kaam hai, even aapko jo lag raha hai aapka kaam hai, vastuta bhagwan ka kaam hai. aap ek channel baniye, yantra baniye, but ultimate jisko kehte hain tyag, the sense of doership even of the highest. Oh my God, for this time I think the lesson has been sufficient. I have mounted the Calvary of successive disillusionments high enough to attain to the resurrection. Kitna bhi kuch ho jaye hatotsahit nahi hona hai. Successive disillusionments. Ant mein is yog mein wahi pahunchta hai, last point tak. अगर हतोत्साहित अरे मैंने ये प्रयास किया था, इट डिडंट वर्क आउट, मे बी 100 टाइम्स इट मे नॉट वर्क, व्हाट इज देयर. प्रणब्धा टुवर्ड द एंड किसी ने पूछा, बोलते व्हाट इज देयर, विल कम बैक अगेन, ट्राई दिस. यही काम है जो करने योग्य है. ध्युमन भाई सेम थिंग ही सेज, आई विल कम बैक, जल्दी आना चाह रहे हैं माँ का काम करने के लिए. नथिंग रिमेन्स ऑफ द पास्ट बट ए पोटेंट लव which gives me the pure heart of a child. Chhal chidr nahi hai bachche ke andar, which gives me the pure heart of a child and the lightness and freedom of thought of a god.